अमृता ताई कीर्ति को क्या बताती, उनके पास तो खुद सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने कीर्ति को अपने गले से लगा लिया। आस्तिक अरुणिमा को खींचता हुआ कमरे की तरफ ले जा रहा था। अरुणिमा खुद को बचाने के लिए रास्ते में आने वाली हर चीज को पकड़ रही थी, कभी फूलदान, कभी टेबल, कभी पर्दे, लेकिन आस्तिक उसे किसी कोलियों के बैल की तरह खींचता हुआ जबरदस्ती कमरे में ले गया और एक झटके से फर्श पर पटक दिया। आस्तिक ने जोर से दरवाजा बंद किया और अरुणिमा को गुस्से से देखने लगा। अरुणिमा जमीन में बैठी हुई हताश भरे चेहरे के साथ और रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसमें नमक नहीं डाला है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसमें नमक नहीं डाला है, मैंने खीर अच्छी ही बनाई थी, मुझे नहीं पता वो कैसे खराब हो गई, मुझे मारना मत। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा के सामने घुटनों के बल बैठा और एक झटके में उसके बालों को खींच लिया। अरुणिमा के मुंह से एक जोरदार चीख निकलने लगी, लेकिन आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए बोला, आज के बाद तुम खाना बनाने में कभी गलती नहीं करोगी। रात भर अरुणिमा आस्तिक के सामने रहम की भीख मांगती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आस्तिक ने उस पर रहम नहीं दिखाया। उसका मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी हो गया था। मानेसर। पृथ्वी और जानवी की बस मानेसर बॉर्डर पर पहुंच गई थी। वे लोग बस से उतरे और दादा और दादी को देखते हुए जानवी ने कहा, अच्छा दादी जी, अब हम यहाँ से कोई बस या टैक्सी ले लेंगे, दिल्ली यहाँ से सिर्फ एक घंटे के सफर पर ही है। दादी आगे आई और जानवी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जाना चाहती हो तो तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर तुम आज रात यहाँ रुक जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कल चली जाना। जानवी हैरानी से दादी को देखने लगी और पृथ्वी को देखने लगी। पृथ्वी बोला, नहीं दादी जी, दरअसल मुझे जल्दी वापस भी जाना है, हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। तभी दादा और दादी का बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, पृथ्वी, दरअसल बात यह है कि हम यहाँ पर अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए आए हैं और कल हमारे माता पिता की 75वीं सालगिरह है, बस हम चाहते हैं कि आप कल सुबह का फंक्शन अटेंड कर लें, उसके बाद हम आपको खुद दिल्ली छोड़ाएंगे। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ घंटे की बात है और रुक जाइए। पृथ्वी जानवी को देखने लगा और जानवी पृथ्वी को देखते हुए आंखों से पूछती है कि क्या करना है, तो पृथ्वी हाँ में सर हिलाता है। जानवी मुस्कुराते हुए दादी को देखकर बोली, ठीक है दादी, हम आपकी सालगिरह का फंक्शन अटेंड करके ही जाएंगे। इस पर दादाजी मुस्कुराते हुए पृथ्वी को देखकर बोले, बरखुरदार, इशारों इशारों में बातें करने वाले तुम अकेले नहीं हो, हम भी अपनी श्रीमती जी की बातें इशारों में ही समझ जाया करते हैं। दादाजी की बात पर सब हंसने लगे। सबके लिए मेहमानों वाला कमरा तैयार कर दिया गया था। रात काफी हो गई थी और सुबह फंक्शन था, उसके बाद कुलदेवी के दर्शन करने थे, इसीलिए सारे मेहमानों को कमरों में छोड़ दिया गया था। एक औरत उनके साथ कमरे में आई और बोली, जानवी पृथ्वी, ये रहा तुम दोनों का कमरा, तुम दोनों भी आराम कर लो, थक गए होंगे। औरत उन्हें कमरे में छोड़कर चली गई। तो पृथ्वी बोला, ये हमको एक ही कमरे में क्यों छोड़कर गई है, मैं जाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे लिए कोई और कमरा है। पृथ्वी आगे बढ़ता उससे पहले ही जानवी ने उसके हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो, उन लोगों की नजरों में हम पति पत्नी हैं, तो एक कमरे में ही तो रहेंगे ना, अब तुम जाकर ऐसे पूछोगे कि कोई दूसरा कमरा है तो उन्हें शक नहीं होगा हम पर। पृथ्वी आंखें छोटी करते हुए बोला, शक गया तेल लेने, तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता मैं। जानवी अपना सर पीट लेती है और कहती है, कैसे इंसान हो तुम, दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकते क्या, अब तक वो हम दोनों को पति पत्नी समझ रहे थे, अब अचानक से तुम उन्हें जाकर कहोगे कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है तो उनका दिल नहीं टूट जाएगा, उनका भरोसा उठ जाएगा लोगों के ऊपर से। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है एक कमरे में रहने की, ठीक है तुम बेड पर सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। पृथ्वी घूरते हुए जानवी को देखकर बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी कुछ ही दिन पहले गोली लगी है और पैर पर चोट भी आई है, ऐसे में मैं तुम्हें जमीन पर सोने दूंगा, चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ, मैं सामने सोफे पर सो जाता हूँ। अगली सुबह महल। अरुणिमा का रोम रोम दर्द से तड़प रहा था, उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक चादर लिपटी हुई थी और वो इस वक्त दीवार के एक कोने पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। अगर वो हल्की सी सिसकी भी लेती तो उसके पूरे शरीर में दर्द की एक लहर कौन जाती। अरुणिमा ने अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से लगाते हुए अपने चेहरे को घुटनों में छुपाकर घुट घुट कर रो रही थी। उसने धीरे से अपने चेहरा उठाया और बेड पर सो रहे आस्तिक को देखा। सोते हुए कितना शांत और कितना मासूम नजर आता है, उसे सोता हुआ देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इंसान रात में एक मॉन्स्टर बन जाता है। कल रात आस्तिक की यातनाएं याद करके अरुणिमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपनी घबराई नजरों से आस्तिक को देखकर कहा, ये इंसान पागल है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मुझे मार डालेगा, अगर मैं मर गई तो मेरी माँ मेरी बहन का क्या होगा, ये इंसान उन्हें भी मार डालेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, अपनी माँ को और अपनी बहन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ, ये इंसान साइको है, कल रात बिना किसी गलती के इसने मुझे इतना मारा, मैं दो बार बेहोश हो गई थी और उसने बेहोशी में ही मेरा बलात्कार किया, यहाँ अरुणिमा तो अपने अंदर दर्द का एक समंदर समेटे हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, पर वहां महल के किसी दूसरे कोने में जिसने अरुणिमा की बनाई खीर में नमक डाला था, उसके षड्यंत्र भी काफी पक्के थे। उसने आस्तिक के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सजा मिलनी जरूरी थी। अगर तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि दूसरों पर बुरी नजर रखने का क्या अंजाम होता है। अरुणिमा अभी भी सिसकते हुए दर्द का घूंट पिए जा रही थी, तभी आस्तिक की नींद खुली और वो अलसाते हुए बेड से उठा और दीवार के एक कोने में उस छोटी सी आकृति को देखा जिसने अपने शरीर को चादर से ढका हुआ था। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने बॉक्सर पहने वो अरुणिमा के पास आया और धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस करते ही अरुणिमा कांप गई और घबराते हुए देखने लगी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि आस्तिक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है, अरुणिमा गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मारना मत। आस्तिक बस अपनी गहरी निगाहों से अरुणिमा के डर से पीले पड़ रहे उस चेहरे को देखता रहा। वो धीरे से अरुणिमा को लेकर बेड पर आया और उसे बेड पर रख दिया।